समर्थ अपने पापा की ये बात सुनकर उनकी तरफ घूरते हुए बोला, लेकिन पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ। समर्थ की बात सुनकर समर्थ के पापा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, एक बात बार बार दोहराने से सच बदल नहीं जाता समर्थ, और सच यही है कि तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो हमारे खानदान को एक वारिस नहीं दे सकती तो हम उन्हें अपने घर की बहू नहीं मना सकते। आप खुद ही सोचिए, अगर हमने आपकी शादी एक बांझ लड़की से कर दी तो हमारे खानदान का वंश कैसे चलेगा। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात। अभिमन्यु, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, वो अब अर्पिता के बारे में और कुछ नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वहां से चला जाना ही सही समझा। जैसे ही अभिमन्यु वहां से निकला, समर्थ ने उसे रोके हुए कहा, अभिमन्यु एक मिनट रुको। लेकिन अभिमन्यु उसकी बात सुनकर भी नहीं रुका और वो चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। समर्थ ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी पापा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी तो अर्पिता से ही करूंगा, फिर चाहे आप लोग उसे अपने घर की बहू माने या ना माने। समर्थ इतना बोलकर वहां से बाहर जाने लगा। तभी समर्थ के पापा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, समर्थ, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा हमसे और हमारे खानदान से कोई नाता नहीं बचेगा। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी, वो एक पल के लिए रुका और उसने पीछे मुड़कर अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे और अर्पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना तो यही सही, मैं भी अब आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगा। समर्थ ने जैसे ही ये बात बोली तो समर्थ की मम्मी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, समर्थ बेवकूफी मत करो और वापस आओ। समर्थ ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मी, अब मुझे अर्पिता के साथ शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता, यहां तक भगवान भी नहीं। इतना बोलकर समर्थ अपने पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल आया और उसने देखा अभिमन्यु की कार वहां से जा चुकी थी। समर्थ ने अपनी कार निकाली और वो सीधे राजमहल वापस आया। अर्पिता इप्सिता के साथ वहीं हॉल में ही बैठी थी और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वहीं मासा अपनी आराम कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी। मासा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। इप्सिता ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्पिता आप इतनी क्यों बेचैन हो रही हैं। अर्पिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं क्यों भाभी सा, लेकिन हमारे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच कहें तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे। अर्पिता बोल ही रही थी कि तभी अभिमन्यु सामने की तरफ से आया और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो काफी ज्यादा मायूस लग रहा था। जैसे ही अर्पिता की नज़र अभिमन्यु पर गई, वो बोलते बोलते चुप हो गई। इप्सिता की नज़र अभिमन्यु पर गई, उसने अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा, वो समझ गई कि वहां पर क्या हुआ है। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है हमें जिस बात का डर था वही हुआ। अर्पिता भागते हुए अभिमन्यु के पास आई और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई सा क्या हुआ, आप अकेले क्यों आए हैं, समर्थ कहाँ है। अभिमन्यु अर्पिता की तरफ देख रहा था। अर्पिता के चेहरे की बेचैनी देखकर अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। तभी इप्सिता भागते हुए अभिमन्यु के पास आई और उसने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा। अभिमन्यु ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। अर्पिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई सा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, बताइए। मासा अभिमन्यु की तरफ देखकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अर्पिता हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस तरह के सपने मत देखिए, समर्थ अपने घर के इकलौते बेटे हैं और उनके मम्मी पापा आपको अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। अर्पिता ने मासा की ये बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा ऐसा नहीं हो सकता, समर्थ ने हमसे कहा था वो अपने मम्मी पापा को मना लेंगे। अर्पिता इतना बोलते बोलते काफी ज्यादा मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, भाई सा बताइए ना आप, क्या मासा जो बोल रही है वो सच है। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अर्पिता मासा जो कह रही हैं वो सही है, समर्थ के मम्मी पापा आप दोनों की शादी के लिए नहीं माने। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो वहीं जमीन पर ही घुटनों के बल बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इप्सिता ने अर्पिता को संभाला और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अर्पिता संभालिए खुद को। अर्पिता रोती जा रही थी और अभिमन्यु ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा आप सही कह रही थी, समर्थ के मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मासा अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी पीछे से समर्थ की आवाज आई, मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो ना माने, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं अर्पिता से ही शादी करूंगा। समर्थ ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए ये बात कही और उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वहीं हॉल में आकर खड़े हो गए। नरेंद्र और पल्लवी के साथ साथ अदिति और कियारा दोनों भागते हुए वहीं हॉल में आई और घर के सारे नौकर वहीं चुपचाप खड़े थे। तभी समर्थ राजमहल के अंदर आया और अर्पिता के पास आकर रुका। उसने अर्पिता की आंखों में आए हुए आंसुओं को देखा और अर्पिता को ऐसे रोते देखकर वो खुद भी वहीं जमीन पर उसके सामने ही बैठ गया और उसने अपने हाथों से अर्पिता के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमारे मम्मी पापा आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अर्पिता। अर्पिता ने समर्थ की बात सुनी और उसने उसी तरह रोते हुए कहा, लेकिन समर्थ आपने तो कहा था कि वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, तो फिर अब जब उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है तो फिर क्या करेंगे हम। अर्पिता रोते हुए ये सारी बातें बोल रही थी। तभी समर्थ ने अर्पिता को उठाया और उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम वही करेंगे जो हमने सोचा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। समर्थ ने इतना बोलकर अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को पकड़कर वो अर्पिता को अपने साथ महल के हॉल में बने मंदिर की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं नरेंद्र और पल्लवी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी पल्लवी ने नरेंद्र के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, अब ये कौन सी नौटंकी चल रही है यहाँ पर, इन लोगों के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। नरेंद्र ने पल्लवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत रहें आप, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और देखें अभी तो ये ड्रामा शुरू हुआ है, मजे ले इसके, उसके बाद हम अपनी चाल चलेंगे। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा। समर्थ अर्पिता को जिस तरह से लेकर जा रहा था उसे देखकर रिप्सिता और अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगे और वो दोनों उन दोनों के पीछे गए। मासा अभी भी चुपचाप वहीं पर खड़ी उन दोनों को देखते जा रही थी। तभी समर्थ ने वही मंदिर के सामने अर्पिता को खड़ा किया और सामने रखी दुर्गा माता की मूर्ति के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। उसने तेज आवाज में कहा, मैं यहाँ भगवान को साक्षी मानकर अर्पिता को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूँ। इतना बोलकर समर्थ ने वही मंदिर में रखे हुए माता रानी के श्रृंगार के सामान के पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठाई और अर्पिता के सामने आकर खड़ा हुआ। समर्थ की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समर्थ क्या करने वाला है।